मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 21 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अजय कुमार, आप नई दिल्ली से हैं, और शुभम विकास नेहे, आप नासिक महाराष्ट्र से हैं। तो अजय और शुभम, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग बदसलूकी की संस्कृति पर बात करेंगे, राइट। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरे समाचारों को एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी, दूरदर्शन की न्यूज भी देखी होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। कल के दूरदर्शन पर एक बड़ी खबर थी और उस पर डिस्कशन जैसा भी आयोजित किया गया था, और वह है दोस्तों की कोयला खनन के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देना। ये एक बहुत बड़ी खबर है, थोड़ी सी मैं इस पर बात कर लूं। मित्रों, एक शब्द आपने सुना होगा, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, है ना। नेशनलिटी और नेशनलाइजेशन दोनों अलग अलग शब्द हैं। नेशनलिटी तो भावना से जुड़ी हुई बात है, राष्ट्रवाद की भावना, और नेशनलाइजेशन का मतलब है कि देश की किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि उस पर राष्ट्र का अधिकार हो जाना। राष्ट्र का अधिकार हो जाने का मतलब है, जैसे कि अगर हम कोयला क्षेत्र की ही बात को लें, तो कोयला एक नेचुरल रिसोर्सेज है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका दोहन, एक्सप्लाइटेशन या खनन कह लीजिए, कि दो तरीके से किया जा सकता है, या यूं कह लीजिए कि तीन तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज इसकी खुदाई करें, कोयला निकालें, और वो सरकार को बदले में रॉयल्टी दें, क्योंकि वो राष्ट्र के नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, तो सरकार को रॉयल्टी देंगे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि नहीं, प्राइवेट कंपनियां नहीं करेंगी, सरकार खुद करेगी। जो जब सरकार खुद करेगी, तो उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। जैसे आपने सुना होगा कि पहले बैंक सबके सब प्राइवेट सेक्टर में थे, लेकिन जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब है कि उन सभी बैंकों का सरकारीकरण हो गया और सरकार के कब्जे में आ गए। तो मित्रों, चूंकि हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था चल रही थी, तो कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया, और यह किया गया 1973 में, आजादी के इतने साल बाद। इससे पहले क्या था, इससे पहले निजीकरण था, जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, और जो तीसरा मॉडल होता है वो होता है कि उसमें दोनों ही शामिल है, पीपीपी मॉडल आज के संदर्भ में कर दीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक रूप भी कह सकते हैं। खैर, तो दोस्तों, अब फिर से सरकार ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसे आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से उदारीकरण के क्षेत्र में या प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम या बहुत बड़ा जंप मान सकते हैं, कि अब जो कोयले खदान की खुदाई, आप कह लीजिए कोयले का जो खनन है, उस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी आ सकेंगी। देखिए, अभी तक क्या स्थिति थी, कोल इंडिया का नाम आपने सुना होगा, कोल इंडिया बेसिकली सरकारी कंपनी है और वही कोयले का खनन करती थी। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी कोयले का खनन करती थी, यहां आपको कंफ्यूजन से थोड़ा सा बचना है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी कोयले का खनन करती थी, लेकिन वो ऐसी कंपनी थी जिनको अपने फैक्ट्री के लिए कोयले की बहुत जरूरत होती थी, तो वो कोयले का खनन करके कोयले को बेच नहीं सकती थी, वो उसका खुद इस्तेमाल करती थी। जैसे कोई ऐसी कंपनी जो बिजली बना रही है, कोयले से बिजली बना रही है, तो उसको कोयला चाहिए, तो अपने उपयोग के लिए वो कर सकती थी। सीमेंट में कोयले की खपत होती है, स्टील में कोयले की खपत होती है, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज में कोयले की खपत होती है, तो ऐसी कंपनियों को कोयले खनन की अनुमति दे दी जाती थी, केवल उनके अपने उपयोग के लिए। और अगर किसी दूसरे को कोयला खरीदना है, तो उसे कोल इंडिया के पास जाना पड़ेगा और कोयला खरीदना पड़ेगा। तो आप ये कह दीजिए कि देश में जितना भी कोयले का उत्पादन होता था उस पर कोल इंडिया का ऑलमोस्ट एकाधिकार ही जैसा था, 80% जो खनन है वो कोल इंडिया करता था, अब प्राइवेट क्षेत्र में उसको अलाउ कर दिया गया है। न्यूज में आपने सुना होगा कि अक्सर न्यूज में आता है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, मित्रों इसके बारे में मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं, जो कैबिनेट है वही सही मायने में सरकार के बिहाफ पर सारे निर्णय लेती है, इसके अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं, तो जो इकोनॉमी संबंधी जो निर्णय होते हैं वो बट नेचुरल है कि उसकी आर्थिक मामलों की जो समिति होती है वो लेती है, उसने यह निर्णय लिया है। और अब फ्रेंड्स जब प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी तो फिर आप देखें कि इसके क्या क्या लाभ होंगे, उसके बारे में बाकायदे जो हमारे कोयला मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनका स्टेटमेंट भी आया है और न्यूज में आपने सुना भी होगा, उन्होंने चार बातें बताई हैं इससे क्या फायदे होंगे। पहला उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पूंजी निवेश होगा, लोग प्राइवेट कंपनी आएंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कोयला खनन की गतिविधियां बढ़ेंगी तो बट नेचुरल है कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी और कई कंपनीज आएंगी तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होगा, तो कॉम्पिटिशन से हमेशा दो चीजें होती है, नंबर वन चीजों की क्वालिटी अच्छी होती है और दूसरा चीजों की कीमतें कम होती हैं, क्योंकि कंपटीशन के तहत वो अब हर कोई सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें, हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें, तो ऐसी स्थिति में वो कीमतें गिरती चली जाती हैं और एक फिर एक सीमा पर आकर के वो स्थिर हो जाती है जो न्यूनतम कीमत उसकी हो सकती है। तो मित्रों ये थोड़ी सी बात मैंने कोयला खनन के बारे में बताई और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके बारे में जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिलता है तो आप बिल्कुल उसे नोट करते जाइएगा, मुझे जैसे ही कुछ मिलेगा इस पर तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद जो रेडियो न्यूज है थी तो उसमें कुछ बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और ये कह लीजिए ये सदाबहार टाइप के आंकड़े हैं, मतलब एक साल के लिए तो आप इन आंकड़ों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में काफी कुछ कर सकते हैं। अब ये आपकी दक्षता के ऊपर है, कुशलता के ऊपर है कि आप कितने खूबसूरत तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। देखिए एक आंकड़ा यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात बताई है कि जो दाल का उत्पादन है हमारे यहां काफी बढ़ा, अभी तक 1.70 करोड़ टन दाल का उत्पादन होता था, पिछले साल हुआ 1.70 करोड़ टन, अब वो साल भर में ही बढ़ करके हो गया है 2.30 करोड़ टन, 2.3 करोड़ टन कह लीजिए या 2.30 करोड़ टन, ये बहुत बड़ी वृद्धि है एक साल के अंदर, 30% के आसपास वृद्धि हो जाना मतलब काफी मायने रखता है, 30-35% आप देखेंगे ऑलमोस्ट। मित्रों इसके बाद जो दूसरा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो है कि अब हमारे यहां जो यूरिया खाद जो होता था वो पूरी तरह से नीम कोटेड हो गया है, नीम कोटेड जिसको कहते हैं नीम लेपित, पहले दूरदर्शन पर साल भर पहले इसका खूब एड भी आता था और पिछले साल आपके प्री एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है नीम कोटेड यूरिया था, 2016 के एग्जाम में पूछा गया है नीम कोटेड यूरिया के बारे में, तो अब 100% जो यूरिया हो रहा है वो नीम कोटेड हो रहा है। नीम कोटेड होने से आप यूं कह लीजिए कि उसमें जो उर्वरक की जो बुराइयां थी वो कम होती जा रही हैं और इसका फायदा ये हुआ है कि यूरिया का उपयोग कम हो गया है और दूसरा फायदा यह हुआ कि जब यूरिया का उपयोग कम हो गया तो बट नेचुरल है कि किसानों के धन की भी बचत होने लगी, अब वो कम यूरिया खरीद रहे हैं तो उनका पैसा भी बचने लगा, यूं कह लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन में वृद्धि हुई, मतलब आंकड़ा एक जो आंकड़ा दिया गया है वो बड़ा अच्छा आंकड़ा है कि रासायनिक उर्वरक की कुल खपत में, अब मैं केवल यूरिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो रासायनिक खाद होते हैं उनके कुल खपत में एक साल में 8-10% की कमी हुई है, 8-10% की कमी, तो काफी अच्छी कमी है और इसका रीजन ये रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब जो मिट्टी है उस वो किस तरीके की है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और फिर बताया जाता है कि इस मिट्टी में ये तत्व डाले जाने चाहिए और इतनी मात्रा में डाले जाने चाहिए, तो बट नेचुरल है कि ये ज्यादा साइंटिफिक, अदरवाइज तो किसान कुछ भी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से 8-10% रासायनिक उर्वरकों में कमी आई है और फिर लेकिन जो प्रोडक्शन है वो लगभग 5% के आसपास बढ़ गया है, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है जो जिनका आप उपयोग कर सकते हैं कि रासायनिक खादों में कमी आई है उनके उपयोग में, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। टोटल उत्पादन में खाद्यान्न शब्द का न कि कृषि उत्पादन शब्द का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों न्यूज के बारे में इतना ही, आइए अब थोड़ा समय मुख्य विषय पर बात हम लोग करते हैं। मित्रों, खासकर मैंने जो विषय उठाया है वो न्यूज में आपने सुना कि, और चैनल्स पर तो ये काफी विस्तार के साथ आ रहा है कि जो दिल्ली में जो सरकार है, आप पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी जिसके मंत्री हैं, उन्होंने अपने घर पर एक बैठक बुलाई और उसमें जो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो वहां गए, रात का समय था तो उनके साथ बदसलूकी की गई, वहां जो विधायक थे उन्होंने मारपीट की, हाथापाई भी की। ये मामला कल दिन भर बहुत गर्म रहा है और चैनल्स पर काफी कुछ आ भी रहा है, और मैंने जो बदसलूकी की संस्कृति की बात कही है वो उस विषय को मैंने इसी घटना से उठाया है। मित्रों चलिए, अब घटना क्या है, सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते, हम तो सिविल सर्विस वाले पॉइंट को देखते हैं कि इससे हम सिविल सर्विस के लिए क्या ले सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों ये टॉपिक जो है, मुझे लगता है कि आपका जो मेंस का फोर्थ पेपर है जिसमें एप्टीट्यूड मॉरलिटी की बात होती है, उसके लिए बहुत ही सटीक टॉपिक है, सटीक ये कह लीजिए कि घटना भी है। अब आप इस घटना को देखिए कैसे देखेंगे, हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है। ये घटना एक चीफ सेक्रेटरी और कुछ विधायकों के बीच की तो है, लेकिन जब हम इसको एनलार्ज करेंगे तो ये केवल एक चीफ सेक्रेटरी या कुछ विधायकों के बीच में नहीं हो जाएगा, यहां जो चीफ सेक्रेटरी है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी में, हायर ब्यूरोक्रेसी में, सुप्रीम ब्यूरोक्रेसी में, और जो विधायक हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे जनप्रतिनिधि में, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें, संवैधानिक दृष्टि से देखें, तो फिर यह कन्वर्जन जो है वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, अब चीफ सेक्रेटरी तो ब्यूरोक्रेसी के टॉप पर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी वह परमानेंट एग्जीक्यूटिव कही जाती है, स्थायी कार्यपालिका कही जाती है, स्थायी कार्यपालिका। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि तो देखिए विधायिका के हिस्से होते हैं, वो लेजिस्लेचर के हिस्से होते हैं, लेकिन उसमें जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहते, है ना, मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो बदल दिया जाएगा या मिनिस्टर्स को हटा ही दिया जाएगा, नया मिनिस्टर ले आया जाएगा, चुनाव में पार्टी के पराजय के बाद अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर सबके सब नए मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो आप देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज लगातार बदलती रहती हैं, कोई ना कोई मिनिस्टर होगा ही लेकिन व्यक्ति स्थायी नहीं होगा, तो इसीलिए उसे कहा जाता अस्थायी कार्यपालिका। तो यह भी आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, राइट, मैं केवल सोचने के तरीके को आपको बता रहा हूं। अब आप देखें कि इसकी एक और स्थिति है, इसकी स्थिति यह है फ्रेंड्स कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो सर्वोच्च अधिकारियों में से है, है ना, टॉप पर है। दिमाग में ये बात आती है और थोड़ी सी यूं कह लीजिए कि डरावनी भी है और बहुत ही आशंका पैदा करती है, भयभीत भी करती है कि अगर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं तो जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ क्या हो सकता है, राइट। इसके बाद मित्रों, जो स्थायी कार्यपालिका है, जो सरकार है, याद रखिए कि वो प्रतीकात्मक रूप में काम करती है, प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से कि यहां व्यक्ति नहीं है, जो चीफ सेक्रेटरी है वो व्यक्ति नहीं है, या कोई भी जो सरकारी अधिकारी है अगर वो सरकारी दायित्वों को उस समय निभा रहा है तो बेसिकली वो एक तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब प्रतीक के रूप में वो सरकार ही होता है। जैसे आप हिस्ट्री में आपने घटना सुनी होगी, पढ़ी होगी कि 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ, थाने को जला दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान, तो जैसे ही गांधी जी को इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने तत्काल अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे सरकारी प्रभुसत्ता के ऊपर किया गया आक्रमण माना था और अगर आंदोलन चलता रहता तो वो पता नहीं कितना दमनकारी कदम उठाते। तो प्रतीकात्मक होती है, तो जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं या गवर्नमेंट सरकारी जो संपत्ति भी है वो प्रतीकात्मक है, और एक डेमोक्रेसी में जो सरकार है, याद रखिए, वो पब्लिक है, सरकार पब्लिक की है, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इस तरह का जो एसाल्ट है वो पब्लिक पर किया गया एसाल्ट हो जाता है, राइट। अब जनप्रतिनिधि भी देखिए पब्लिक है। इसको आप देखेंगे कैसे मित्रों, उसके लिए मैं आपको कुछ एंगल्स बस बता रहा हूं कि कैसे आप किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सोचने की क्षमता तो आपको विकसित करनी पड़ेगी सिविल सर्वेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो। अब ये बात अलग है कि जितना ज्यादा आप अच्छे से सोच पाएंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग हो जाएगी। अब आप देखिए मित्रों, ये जो आज का मैंने जो शीर्षक चुना है, अब इसके कितने पक्ष हैं। देखिए, एक तो बिल्कुल इसका नैतिक पक्ष है, मोराल वाला पक्ष है। नैतिक पक्ष इस मायने में कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो बहुत ही एज में बहुत सीनियर है, और वहां जितने भी विधायक हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उम्र में ही कम है। चलिए हम इसको वैधानिकता को छोड़ दें, तो उनके साथ ये बदसलूकी की जा रही है। दूसरा इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि यदि किसी मामले को लेकर के कोई विवाद की भी स्थिति है कि विधायक कह रहे हैं कि ये करना है और चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि उनको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि अगर नहीं हो सकता है तो बजाय इसके कि उसे समझा जाए, क्या उसे विवाद या झगड़े में इस तरीके से तब्दील कर दिया जाना चाहिए। तो क्या सच में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या ब्यूरोक्रेसी हो, क्या उनके बीच में एक अलग किस्म की कटुता पैदा हो रही है, दोनों के बीच में दरार पैदा होनी शुरू हो गई। क्योंकि देखिए, ये एक ही घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी इस तरह की घटनाएं समय समय पर आप लोगों ने सुनी और पढ़ी होंगी कि पुलिस वाले पर किसी विधायक ने हाथ उठा दिया, किसी मिनिस्टर ने किसी को बहुत बुरी तरह से डांट दिया, सरेआम बेइज्जत कर दिया, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। कोई चीफ को, यहां तक कि मुख्यमंत्री सीधे सीधे खुलेआम ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी दे देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। जो की जाती है, जो बातें तो अलग हैं कि साहब एक साल में 4-5 ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी दिखाई इस बात से भी लगाया जा सकता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है, क्या तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या क्या जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या जो नौकरशाही है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते में बाधा बन रही है, या जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। मित्रों, इस तरह के ढेर सारे सवाल उठते हैं। तो इसका देखिए नैतिक पक्ष भी है, इसका वैधानिक पक्ष भी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो मैंने स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका की बात बताई, और इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। राजनीतिक पक्ष का मतलब है लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोकतंत्र में बेसिकली अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो घटना घटित हुई है, इस घटना को आप किसी भी कोण से सही नहीं ठहरा सकते, ये बिल्कुल स्थापित सत्य है। तो मित्रों, मैंने केवल सोचने के लिए आपको कुछ तथ्य ही प्रदान किए हैं, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी इसमें जोड़ा घटाया नहीं है, और ऐसा मैंने जानबूझकर इसलिए किया है ताकि आप सब के अपने दिमाग ओपन रहें, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई वक्तव्य दे दूंगा अपनी तरफ से तो फिर आपकी जो सोच है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रह जाएगी। तो मित्रों, इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं: सुरजीत चौरसिया जोधपुर राजस्थान से, विशाल कुमार, रोहित सवधानी जयपुर राजस्थान से, संजय यादव भोपाल से, संदीप चौहान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आशीष कुमार पटेल और अभिषेक चड्डा जम्मू से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।